और अभी हम आज की जो हमारी भट्टी है, भट्टी का नाम सभी को पता है ना, पूज्य और पूर्वज स्थिति बनाने के लिए हम ये भट्टी कर रहे हैं। और इस भट्टी के लिए हम सब इतनी सुंदर पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं कि कितना सुंदर, कितना पवित्र और कितना मनोरम वातावरण है। मधुबन शांतिवन वरदान भूमि है। प्यारे बाबा और दादियों ने यहाँ इतनी तपस्या की है कि यहाँ के कण कण में तपस्या का बल भरा हुआ है। ये प्राप्ति स्वरूप बनाने वाली भूमि है। कहते हैं अप्राप्त नहीं ब्राह्मणों के खजाने में कुछ भी, तो यहाँ बाबा का स्थूल सूक्ष्म भंडारा भरपूर है। ये सिद्धिदात्री मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि है और ये परिवर्तन भूमि है। जैसे ही हम इस भूमि पर पांव रखते हैं, हमें लगता है कि हम जमीन पे नहीं हैं, कहीं हल्के होकर के ऊपर ऊपर उड़ने लगे हैं। पीछे की जो स्मृतियां हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। भविष्य की अगर कोई कल्पना थी तो वो भी खत्म हो जाती है और हमें लगता है कि हम बाप दादा के साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि इस भूमि को वरदान है सहज याद का। भगवान को याद करना इस स्थान के अलावा लोगों को मुश्किल लगता है, क्या करें मन नहीं लगता। लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं ऑटोमेटिक मन बाबा की तरफ खींचने लगता है, नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं। साकार और अव्यक्त रूप हमारे नयनों में समाने लगते हैं। हमें लगता है कि हम फरिश्ते बन गए हैं, उड़ रहे हैं। मन में शुद्ध विचार, महान विचार, ऊंचे विचार आने लगते हैं। तो ये ऐसी वरदानी भूमि है जहाँ सहज परिवर्तन होता है। और यहाँ हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपना पूर्ण परिवर्तन करके ही जाएंगे। अर्थात हमारे भीतर अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा संस्कार है, कोई ऐसी आदत है जो हमें नहीं चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं चाहता तो हूँ पर होता नहीं है, और मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन हो जाता है। तो एक बार बाबा ने कहा था कि जब आप नहीं चाहते तो भीतर कोई और है क्या? तो वो भीतर और कौन बैठा है उसको हम यहाँ पूरी तरह से खत्म करके जाएं। क्योंकि ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी है। इस मधुबन भूमि में हम नित्य अमृत वेले यज्ञ करते हैं और जब भट्टी है तो सारा दिन ही यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में हम क्या आहुतियां डालते हैं? दुनिया में तो बड़ी महंगी आहुति होती है, लेकिन हमारी जो आहुति है वो तो बिना कीमत की है। ऐसी चीजें हम आहुति में डालते हैं जो किसी के काम की नहीं। तो जैसे दीदी ने अभी विकारों के सूक्ष्म रूप समझाए, घृणा का सूक्ष्म रूप, ईर्ष्या का सूक्ष्म रूप, क्रोध का सूक्ष्म रूप, तुम अपने भीतर देखें और एक एक उस सूक्ष्म बुराई की आहुति डाल दें। क्योंकि मधुबन एक सुंदर दर्पण भी है। तो जो लौकिक दर्पण होता है उसमें तो हमारा बाहरी रूप दिखता है, और इस दर्पण में हमारा अंदर का रूप एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। हम खुद ही खुद को देख पाते हैं। तो जब बाहर के दर्पण में देखते हैं तो क्या करते हैं? कहीं दाग लगा है, कहीं कोई तिनका लगा है, तो उसको साफ कर देते हैं। तो मधुबन रूपी दर्पण में अपने भीतर के रूप को देख करके हमें बेदाग बन जाना है। और ये स्वर्ग का मॉडल है। तो एक बार मुरली में कहा था बाबा ने, स्वर्ग में किसको आना अलाउ नहीं है? भगवान को भी आना अलाउ नहीं है, माया को भी आना अलाउ नहीं। तो यहां माया नहीं आती, तो यहां माया जीत का सुंदर अनुभव करेंगे। माया जीत, इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करेंगे। और मधुबन के नाम पे आप देखिए, दुनिया में वृंदावन, गोकुल, मधुबन यादगार स्थान बने हुए। तो यादगार स्थानों पे भी अल्पकाल की खुशी लोगों को मिलती है, लेकिन हम तो रियल मधुबन में आए, तो हमारी तो खुशी न्यू नो बाउंड्स, अर्थात खुशी का पारावार नहीं है। असीमित खुशी इस भूमि के कण कण में, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, पौधे पौधे में है। वो भी हमें देख के मुस्कुराते हैं और वो हमें कहते हैं कि देखो तपस्या में पले हुए हम कितने हरे भरे और खुश नसीब। तो आप भी तपस्या के बल से हमारी तरह ही हरे भरे, खुश नसीब, खिले हुए, खुशबूदार बन जाओगे। एक तरह से प्रकृति भी अपने वरदान हम पे लुटाती है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये मधुबन बहुत सुंदर तिजोरी है, तो तिजोरी में अमूल्य चीजों को रखते हैं ना। तो बाबा ने कहा था, आप सब मेरे बच्चे बहुत अमूल्य हो, आप सब मस्तक मणियां, हृदय मणियां मधुबन रूपी तिजोरी में सुरक्षित रखे हुए हो। बाबा ने आप सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली है। माया यहां बाबा की सुरक्षित तिजोरी में प्रवेश नहीं कर सकती। तो यहां हम सब प्रकार का स्थूल सूक्ष्म आनंद लेंगे, समय के एक एक कतरे को बचाएंगे, सफल करेंगे, अच्छी अच्छी अनुभूतियां करेंगे और अनुभूतियों का स्टॉक जमा करेंगे। वो स्टॉक हमारी उन्नति में तो काम आएगा ही, लेकिन कोई हमें मिलेगा तो उसे हम सौगात में भी देंगे। तो बाबा हम बच्चों को दाता भी बनाते हैं, वरदाता भी बनाते हैं। और हमारी भट्टी का नाम कितना सुंदर है, पूज्य और पूर्वज स्थिति में स्थित होने की भट्टी। हम सब पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। पूर्वज अर्थात दुनिया में हम सबसे पहले जन्मे। तो कल्प वृक्ष का चित्र अपने सामने लाइए, उसकी जड़ों में कौन बैठे हैं? बाबा, मम्मा, दादियां और हम सब भी हैं। हम दिखते नहीं हैं, हम सब गुप्त रूप में बैठे हैं, क्योंकि जड़ें तो हम सब संगमवासी हैं ना कल्प वृक्ष की। मधुर वाणी ग्रुप जब तक आए तब तक हम अपनी पूज्य और पूर्वज स्थिति क्या होती है उस पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो हम कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे, जड़ों में हम सब बैठे हुए हैं और जड़ों के बाद जो तना है उसमें भी हम सभी बैठे हुए हैं, देवताई रूप में, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो देखिए, सृष्टि के आरंभ के दो युगों में और जड़ों में हम सब पूर्वज और पूज्य द्वापर और कलयुग में हैं। तो पूर्वज क्या करते हैं और पूज्य क्या करते हैं? पूर्वज सबकी पालना करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको दुआएं देते हैं, सबका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। लौकिक दुनिया में जो पूर्वज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दादा दादी, माता पिता या और भी बड़े लोग, तो वो बच्चों की पालना में क्या करते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खिलाते हैं। तो चाहे हम खिला करके पालना करें, चाहे हम ज्ञान दे करके पालना करें, दोनों तरीके से उन्नति के निमित्त बनते हैं। तो बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि आप पूर्वज, तो विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं वो आपकी प्रोजेनी है, वो आपकी अग्रिम पीढ़ी है। भले ही वो अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन है तो हमारी ही अगली पीढ़ी ना, तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, पूर्वजों का दृष्टिकोण कैसा हो। हमें ये नहीं सोचना कि उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, क्योंकि तने के बाद जो डालियां निकलती हैं उनको खुराक कहाँ से मिलती है। जड़ें खुराक लेती हैं, उसके बाद तने में खुराक जाती है और तने से फिर डालियों में खुराक जाती है। तो वह सभी धर्म की आत्माएं वर्तमान समय अंचली लेती हैं बाप दादा से और इस दैवी परिवार से, और उस अंचली के आधार पे वो अपना धर्म स्थापन करती है। तो शक्ति कहाँ से मिली, बीज से, जड़ों से, तने से। तो वो धर्म की आत्माएं भी हमारा परिवार है, इसलिए कोई भी धर्म की आत्मा हो सबके प्रति हमारा अपनापन है, शुभ भावना है, और उनको भी हम अपने परिवार का सदस्य मान करके उनके लिए भी हम शुभकामनाएं रखते हैं। इसी तरह से जो भिन्न भिन्न जातियां हैं, जातियां भी बाद में बटी हैं। शुरू में तो हमारा एक ही कुल था, देवता कुल, लेकिन देवता कुल पूरा होने के बाद द्वापर युग आया तो अनेक जातियां बन गई, लेकिन उनके भी पूर्वज हम ही हैं। तो भले कोई किसी भी जाति का हो, है तो हमारी ही अगली पीढ़ी। तो बाबा ने कहा आप पूर्वज कैसे पालना करेंगे, आपने जो अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियां एकत्रित की हैं, उन ज्ञान गुण शक्तियों से आप अन्य आत्माओं को भी देंगे, भरपूर करेंगे। अगर उनमें कोई कमी कमजोरी है तो घृणा नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और बच्चा कोई मिस्टेक कर दे तो घृणा नहीं करता, उसको प्यार से समझाता है। तो उन सब आत्माओं के प्रति हमारा भी वही शुभ भावना का, दातापन का, गुणदान देने का, उदार चित्त का, फ्राक दिल का भाव, ऐसे पूर्वज स्थिति का हमें इस भट्टी में अनुभव करना है। और हम पूज्य हैं तो बाबा कहते हैं देखो द्वापर और कलयुग दो युगों तक आप पूज्य रहेंगे, और पूज्य स्वरूप में आपकी कितनी पूजा होगी। आप अपने भीतर के नेत्र के सामने किसी मंदिर का स्वरूप लाइए और उस मंदिर की इष्ट देवी या देवता के स्थान पे आप अपने आप को देखिए, कितना भव्य और दिव्य रूप है हमारा, और पूजा की विधि को देखिए, कितना श्रृंगार होता है, पूजा की थाली में कितनी वैरायटी चीजें रखी रहती हैं, भोग में कितनी प्रकार का भोग्य पदार्थ है, श्रृंगार कितना सुंदर और कितना कीमती है, सोने चांदी का भी होता है, और जिस केबिन में बिठाया है वो भी देखो कितना चमक दमक रहा है। पुजारी भी एकदम साफ स्वच्छ कपड़े पहने होता है, और जो मंदिर है उसको भी हम देखते हैं कितना स्वच्छ रखते हैं। तो बाबा ने कहा, आप ऐसे पूज्य बनते हो, आप जैसी पूजा किसी और की होती ही नहीं है। तो इस स्थिति का भी हमें इस भट्टी में अनुभव करना है। अभी अगर मधुरवाणी ग्रुप आ गया हो तो भ्रातागण मंच पे आ जाएं।
सीजन की शुरुआत और आपका यहाँ शुभागमन, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं और तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा के अपना स्वागत कर लीजिए। हेलो,
आया गुलदस्ता प्यारा है, और भी हिस्सा आया गुलदस्ता प्यारा है। आज होली हंसों का दल तपस्या को बना रहा है, और भी हिस्सा आया गुलदस्ता प्यारा है। आज होली हंसों का दल तपस्या को पधारा है। हुई सीजन की है शुरुआत, हुई सीजन की है शुरुआत, मिले मौका ये ताजे हैं। आज तो आज तो आज तो आपके स्वागत में खुशी के ताजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में। मोबाइल मौन हो जाए, मौन हो जब मन का मुख का मोबाइल मौन हो जाए। शुरू हो तब अंतर यात्रा, मगन मन प्रभु में खो जाए। मौन हो जब मन का मुख का मोबाइल मौन हो जाए। शुरू हो तब अंतर यात्रा, मगन मन प्रभु में खो जाए। मिला मुश्किल से ये मौका, मिला मुश्किल से ये मौका, खुशी में झूमे नाचे हैं। आज तो आज तो आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में। शक्ति भरनी है, बने ये यादगार भक्ति, यहाँ से शक्ति भरनी है। तपस्या 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है, बने ये यादगार भक्ति, यहाँ से शक्ति सफलता की बधाई की, यहाँ सब साज साजे हैं। आज तो आज तो आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबको बैठे बैठे ही नचा दिया। अभी हमारी गीता दीदी जी पधार चुके हैं। गीता दीदी जी का हम एक हाथ से स्वागत करते हैं। आप सब गीता दीदी जी से बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत बार इनसे मिले हैं, इनके क्लासेस भी की हैं। आप बहुत छोटी आयु में यज्ञ में समर्पित हो गए, लगभग पिछले 53 साल से आप बाबा की सेवा में समर्पित हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों ही जीवन में आप बहुत ही प्रतिभा संपन्न हैं। लौकिक जीवन में आप मैट्रिक की परीक्षा में पूरे गुजरात में टॉपर थे, और इसके बावजूद आपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रतिभा को लेकर के जब यज्ञ में आए तो यहाँ भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जगह जगह योग शिविर, मेले, क्लासेज, ज्ञान सरोवर की मैनेजमेंट को लंबे समय तक संभाला, और अभी वर्तमान समय शांतिवन में आप कन्याओं की ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं, क्लासेज को मैनेज करते हैं, व्यापार और उद्योग प्रभाग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, ज्ञान अमृत में हर महीने आपका लेख छपता रहता है। आप बहुत ही स्वीट स्पीकिंग, कोऑपरेटिव, मिलनसार, सबको आगे बढ़ाने वाली, और हम शांतिवन की सब बहनों के लिए तो एक छत्र छाया की तरह से। तो भी हम दीदी जी से सुनेंगे आप सबके लिए प्रेरणादायी उद्बोधन।
ओम शांति। बाबा के बेहद घर में खास मोरबी से, गुजरात का मोरबी शहर, वहां से हरियाणा का हिसार, वहां से और आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, वहां से बाबा के राजयोगी भाई बहने आप सभी पधारे हैं शांतिवन के पावन परिसर में। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप सभी अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना व्यापार नौकरी धंधा संभालते हुए भी समय निकाल करके खास तपस्या के लिए आए हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, सभी तपस्या के लक्ष्य से ही आए हैं, क्योंकि वहां तो आपको जिम्मेवारियां हैं, वहां ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती है। अपना रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं आप, रोज मुरली क्लास में आप जाते हैं, और क्लास के बाद तो भागने लगते हैं, कि दीदी घर में काम है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, भाइयों को अपने दुकान ऑफिस में जाना है, तो वहां ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो प्यारे बाबा ने और दादियों ने विशेष योग तपस्या का प्रोग्राम बनाया, भट्टियों का प्रोग्राम बनाया कि आप यहां आए, बाबा के घर में आराम से रहें और यहां के शांत शुद्ध और योगिक वातावरण में अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करें। मुरली में भी बाबा सदा बताते हैं कि मधुबन बाबा ने किस लिए बनाया। यहां जो भी रहते हैं, पवित्र योगी भाई बहने रहते हैं, यज्ञ सेवा के लक्ष्य से रहते हैं। यहां कोई सांसारिक, कोई राजकीय, कोई सामाजिक ज्ञाति जाति की बातें यहां नहीं है। यहां 12 मास पूरा वर्ष 365 दिन ज्ञान और योग की बातें हैं। ऐसा वायुमंडल दुनिया में कहीं भी आप जाइए नहीं मिलेगा। भल हिल स्टेशन पर जाते हैं, प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं, वहां प्राकृतिक शांति होती है, पर ये रूहानी आत्मिक शांति शुद्धि का वातावरण बाबा के घर में ही मिलता है। भल दुनिया में अनेक भक्ति के तीर्थ स्थान मंदिर आश्रम बने हैं, वहां भक्ति भावना का श्रद्धा का वातावरण मिलता है, परंतु सत्य ज्ञान पवित्र योगी जीवन वाली आत्माओं का निश्चय और दृढ़ता का वातावरण संगठन हमें यहां मिलता है। इसलिए इतने दूर दूर से समय निकाल करके आप आए हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूं, क्योंकि आज दुनिया में तो भौतिकवाद है, भोगवाद है, लोग वहां समय देते हैं, पर बाबा के बच्चों का समय तो किसके लिए है? बाबा के लिए है, तपस्या के लिए है। जैसे शरीर के लिए रोज हम नहाते हैं, फिर भी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार विशेष समय निकालकर अच्छी तरह स्नान करते हैं। कहते हैं ना, आज तो अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मैल निकाला, बाल धोए, आज तो अच्छी तरह से स्नान किया। रोज नहाते हैं, फिर भी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार ज्यादा समय देकर के शरीर को साफ करते हैं। रोज घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना बहने, और घर साफ करते हैं, फिर भी 2-3 मास में अच्छी तरह से भाई कोने कोने से जाले निकाले, धूल मिट्टी निकाले, अच्छी तरह से साफ सफाई की। तो जैसे बाहरी शरीर के लिए, घर के लिए अच्छी तरह समय निकाल कर सफाई करना जरूरी है, तो हमारे मन बुद्धि संस्कार को भी अच्छी तरह से साफ करने की आवश्यकता है। भल रोज ज्ञान योग हम करते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं न कहीं नाराजगी के, मन मुटाव के, दुख दर्द के, अहंकार के, गुस्से के, ईर्ष्या के जाले बन जाते हैं ना, कचरा जम जाता है। तो ये आवश्यक है कि हम अधिक समय निकाल कर खुद को शांति से बाबा के सामने बैठकर अपने आप को देखें, खुद की सफाई करें, स्वदर्शन करें और अपने आप को और अधिक योग्य बनाएं। बाबा की मुरली पर चिंतन करके वरिष्ठ भाई बहने आपके क्लासेस लेंगे, ज्ञान और योग की गहराई समझाएंगे, ताकि जब हमें भगवान मिल चुके हैं ना, जिस जिस को निश्चय है हाथ ऊपर कर, हमें भगवान मिल चुके हैं, सत्य ज्ञान और योग का रास्ता मिल चुका है, अब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब कुछ बाबा स्पष्ट समझा चुके हैं, तो क्यों नहीं हम पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से अपना पुरुषार्थ करें। बाबा भी हम बच्चों से कैसा पुरुषार्थ चाहते हैं, कैसा पुरुषार्थ चाहते बताओ? तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं ना बाबा, कि ढीला ढाला साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ बाबा हमसे चाहते हैं। हम खुद भी चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं ना, तो ऐसा पुरुषार्थ हम करें। 5-7 दिन का आने जाने में 7 दिन टोटल हो ही जाते हैं, यहाँ 5 दिन और आपके वहां घर से निकले 2 दिन, 5-7 दिन का समय निकाल कर आप आए हैं, तो पूरी रुचि से, खुशी से, उमंग उत्साह से भट्ठी का लाभ आप लेंगे। जिस थीम पर इस भट्ठी का आयोजन किया गया है, हमारी आदरणीय उर्मिला बहन जी भट्ठी के थीम पर, दिनचर्या पर आपका मार्गदर्शन करेगी, और मैं यही कहना चाहूंगी कि एक दिन आना एक दिन जाना, उसमें जो कुछ आगे पीछे आपने ना देखा हो वो चीजें आप घूम ले, बाकी 12-13-14 3 दिन आप पूरा समय भट्ठी के लिए देंगे। कल से आपकी दिनचर्या शुरू होगी। दोनों तरफ नोटिस बोर्ड पर दिनचर्या लगी हुई है, आप पढ़ लेंगे। सुबह अमृत वेला मुरली क्लास तो सबके साथ इकट्ठा इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा, परंतु नाश्ते के बाद 10 बजे से 1:30 बजे तक मॉर्निंग सेशन की भट्टी चलेगी। उसमें योग भी होगा 10 से 10:30, आप चाहे तो लिख लें दिनचर्या, क्योंकि रोज पूरा डिटेल अनाउंस नहीं होगा, इसलिए आप सभी डायरी पेन तो जरूर लाए होंगे, क्योंकि पढ़ाई है तो उसमें आप लिख लें। डायरी पेन लेके आए हैं सभी, ना लाए हो तो लिटरेचर से आप खरीद लें, परंतु डायरी पेन जरूर होनी चाहिए। हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट बच्चे हैं। ये सत्संग कथा कहानी सुनने की बात नहीं है, ज्ञान की गहराई में जाना है तो पॉइंट्स नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो 10 से 10:30 योग अभ्यास होगा, मुरली मनन चिंतन आप करेंगे उस समय, इसलिए 10 बजे आप सबको हॉल में बैठ जाना है। 10 से 10:30 मुरली मनन चिंतन बाबा की याद में सबको करना है और विचार सागर मंथन करना है। घर में तो सब कुछ सौंप कर निश्चिंत होकर आए हैं ना, कि यहाँ आकर भी फोन करते रहेंगे, हाँ नहीं, निश्चिंत होकर। इसलिए भट्टी के समय 10 से 1 बजे तक आपको मोबाइल स्विच ऑफ रखना है। मुरली क्लास के बाद आपको 1-1.5 घंटा मिलेगा, तब आवश्यक कार्य हो तो आप फोन कर लें और निश्चिंत रहे। हॉल में किसी के भी मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। हो सकेगा ना, 3 दिन की बात है, आज तो बाबा ने बता दिया ना कि पूरा समर्पण माना, श्रीमत पर सब कुछ करना। बाकी बाबा ने कहा है घर संभालो, नौकरी धंधा करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की पालना करो, सब बात आज बताई है। आज की मुरली सुनी सबने, सुननी चाहिए। अब तो हरेक को मोबाइल में भी मुरली बेलते है। बहने जो टीचर बहने गाइड बनकर आई है उनका कर्तव्य है मुरली सुनाना। तो मुरली अपने मोबाइल से पढ़ लो या आपस में बहने मिलके सुना दो। आज बहुत अच्छी धारणा की बातें बाबा ने बताई। तो यहाँ आप निश्चिंत होकर आए हैं, दिन में 1 से 5 भी आपको साइलेंस में रहकर भोजन करके फिर आराम करके 4:30 बजे चाय आद पीकर 5 बजे से पहले हॉल में आ जाना है, ताकि शाम को 5 से 6 बाबा की याद का अभ्यास करो, बाबा से बातचीत करो, बाबा से प्यार करो और अपनी ऊंची योग स्थिति का अभ्यास कराया जाएगा। टाइम टेबल में योग अभ्यास का भी टॉपिक लिखा है, नोटिस बोर्ड से हरेक अपने मोबाइल में फोटो ले लें ताकि आप उस अनुसार चल सके। टीचर बहने अपने अपने ग्रुप के लिए दो दो कॉपी हम देंगे टाइम टेबल की, वो आप हमसे ले लेंगे। तो याद रहा सबको, सुबह अमृत वेला मुरली क्लास इसी हॉल में संगठित सबके साथ, उसमें मधुबन शांतिवन निवासी सेवाधारी वीके कॉलोनी के भी भाई बहने होते हैं। नाश्ते के बाद 10 से 1 और शाम को 5 से 8 आपका भट्टी का कार्य चलेगा, उसमें योग भी होगा और विभिन्न टॉपिक्स पर हमारे वरिष्ठ भाई बहने क्लास भी कराएंगे। तो आपका भट्टी में हॉल में मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ रहे, काफी टाइम आपको मिलेगा सुबह 8 से 10 के बीच में, दिन में 1 से 5 और रात्रि 8 के 10 में, आवश्यक हो तो आप मोबाइल यूज करो। ऐसे ही फालतू कैसे हो, कहाँ हो, क्या खाया, ये बातें नहीं करनी है। हाँ, मोबाइल आने से अटैचमेंट बढ़ गए हैं लोगों के, व्यर्थ की बातें बढ़ गई हैं, तो आप डिटैच रहे, जितना हो सके साइलेंस में रहे। आपस में तो मिलते ही रहते हैं, बातें करते ही रहते हैं, ये 3 दिन का आपको मौका मिला है, खुद से बात करो मन ही मन, बाबा से बातचीत करो, आत्माओं को मन सा सकाश दो, योग के वाइब्रेशंस दो। ये सब कुछ ज्यादा वहां नहीं कर पाते हैं, यहाँ मौका है, यहाँ के वायुमंडल में घूमिए, वॉक करिए, साइलेंस में वाइब्रेशंस फैलाए। आप सभी बाबा के बच्चे अपनी अवस्था को पावरफुल बनाने के लिए ही योग भट्टी में आए हैं। आपकी तपस्या से शांति वन का वायुमंडल भी और पावरफुल बनेगा। शिविर में हजारों आए हैं, वो आपको देखें तो लगे कि ये साइलेंस में फरिश्ते घूम रहे हैं। अगर भट्टी के अलावा बाकी के टाइम आप साधारण बन जाएंगे, बातें करेंगे, आवाज करेंगे, तो स्थिति नहीं बनेगी। जैसे पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी अच्छा होमवर्क करता है वो अच्छा नंबर लेता है ना, पढ़ने के बाद बस खाएं पिए खेलें घूमें टीवी देखें तो अच्छा नंबर ले सकेगा? नहीं। इसी प्रकार सुबह शाम भट्टी के बाद अगर आप आवाज में आए, तेरी मेरी करने लगेंगे, बाजार में जाना खरीदना किसी को भी नहीं जाना, आपको अपनी स्थिति बनानी है, लोग अनुभव करें ब्रह्मा कुमार कुमारियां योगी हैं, फरिश्ते हैं। कर सकते हैं ना? लास्ट डे आपको टाइम है, जो कुछ आवश्यक खरीदना हो वो खरीद लेना, परंतु भट्टी में आप लक्ष्य रखें कि पूरा मुझे पकना है। भट्टी, ईंटों की भट्टी तो देखी है ना, आग में कच्ची ईंटों को पकाते हैं। पकी हुई ईंटों से मकान बनेगा तो वो मजबूत बनेगा। इसी प्रकार हमारा पांडवों का ये किला है, योग ज्ञान योग की शक्ति का ये किला है, हमारा संगठन मजबूत शक्तिशाली बने उसके लिए हमें तपना, ज्ञान और योग से पकना है। जिस बात में आप कच्चे हैं, लक्ष्य रखें मुझे मजबूत बनना ही है, ढीला ढाला कमजोर नहीं रहना। तो उसके लिए भट्टी के बाद का समय वो फॉलोअप का समय है, होमवर्क करने का समय है कि जो बातें बताई जाएं वो आप अभ्यास करें, साइलेंस में रहे, इशारे से बातचीत करें। इसलिए मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का भी मौन, ठीक है? तो आप अनुभव कर सकेंगे कि खुद की स्थिति में कितना आनंद है। बाबा ने आपको योगी बनाया है, पूरे ड्रामा में और कोई जन्म में योगी बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। द्वापर कलियुग में तो पतित गृहस्थी होंगे, सतयुग त्रेता में पावन गृहस्थी होंगे, परंतु संगम युग में आप गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को भी बाबा ने कमल फूल समान न्यारा और प्यारा योगी बनाया है। तो इस लक्ष्य को सिद्ध करना है और हमें अपनी स्थिति बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम विश्व की अन्य करोड़ों आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त है। हम सभी तो कोटों में कोई, कोई में कोई है। हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है, उसके लिए बाबा ने सिलेक्ट किया है, तो बहुत पावरफुल बनना होगा। अपने आप को साधारण नहीं समझो, आप केवल अपने जीवन के जिम्मेवार नहीं है, आप आपके आसपास रहने वाले जो भी अज्ञानी आत्माएं हैं उन सबको भी बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले योगी आत्माएं। तो अपनी जिम्मेवारियां भी महसूस करें, अपना लक्ष्य जो हमने बनाया है उनको भी सिद्ध करना है, और बाप दादा की हम सबके लिए जो आशाएं हैं वो भी हमें पूरी करनी है। तो बहुत ही सिलेक्टेड, भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष आत्माएं आप सभी, खुद के लिए ताली बजा। अपनी पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो। जो कोई नहीं कर सकता, वो सारी धारणाएं आप सबने की, नियमित बाबा के लिए टाइम देकर ज्ञान योग आप करते हैं, इसलिए बहुत पावरफुल नॉलेजफुल आप सभी आत्माएं हैं। हमें पूरा धारणा स्वरूप बनकर बाबा को पूरी मदद करनी है, करनी है ना? तो दो हाथ उठाओ, केवल खुद लाभ नहीं लेना है, सबको देना है। और अब तो बाबा ने ऐसी मनसा सेवा सिखाई है जो हर कोई कर सकता है, तो आप सबका दादी जी के तरफ से, मुन्नी बहन जी के तरफ से, हमारे निर्वैर भाई जी के तरफ से और शांतिवन मधुबन निवासी सभी भाई बहनों की तरफ से तपस्या के लिए स्वागत है, स्वागत है, सत्कार है। मैं अनुरोध करूंगी उर्मिला बहन को, आप जानते हैं आप पिछले 45 वर्षों से समर्पित हैं और हमारा हिंदी ज्ञानामृत के आप एडिटर हैं। हिंदी में बहुत अच्छे लेख लिखते हैं, आप भी बहुत अच्छे चिंतक लेखक और वक्ता हैं। मैं चाहूंगी भट्टी का जो थीम रखा है, पूज्य और पूर्वज स्थिति बनाना, इस पर प्रकाश डाले।
ओम शांति। वैसे तो गीता दीदी जी के आने से पहले कुछ पल मैं इस पे प्रकाश डाल चुकी हूँ, लेकिन दीदी जी ने कहा है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर से आपसे कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। हम बात कर रहे थे पूर्वज और पूज्य स्थिति की, तो पूर्वज के बारे में तो हमने काफी क्लैरिटी की, लेकिन जब पूज्य स्थिति की बात कर रहे थे तो फिर मधुर वाणी ग्रुप बीच में आ गया था। मैं अपनी उसी बात को आगे जारी रखती हूँ। हम बात कर रहे थे कि हम किसी मंदिर में जाएं और मंदिर में देखें कि वहाँ इष्ट देव और देवी के रूप में हम बैठे हुए हैं, तो देखिए कितना भव्य और दिव्य रूप है। आप आरती की थाली को देखिए कितनी सजी हुई है, भोग की थाली को देखिए कितनी सजी हुई है, देवी को देखिए कमल वासिनी है, उसके चेहरे के चारों ओर रोशनी है, उसकी ड्रेस कितनी दिव्य है, चमक रही है, उसका जो केबिन है उसकी भी डेकोरेशन बड़ी यूनिक है, पुजारी भी बड़े स्वच्छ कपड़ों में है, मंदिर भी बड़ा साफ सुथरा है, और जो भगत लोगों की लंबी लाइन है उनके चेहरे पे कितनी भावना है, देवी के प्रति कितना सम्मान भाव है। तो जब हम पूज्य बनते हैं, जब हमारी पूजा होती है, तो ऐसी पूजा किसी संत महात्मा गुरु राजनीतिज्ञ किसी की भी नहीं होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था और हमारी गुलजार दादी इस बात को बहुत हाईलाइट किया करती थी कि देखो उनके स्टेच्यू तो काले पत्थर के बना करके ऐसे ही धूप में खड़ा कर देते हैं, ना उनके ऊपर कोई छत्र छाया होती और ना ही उनकी सेफ्टी का कोई प्रबंध होता, मिट्टी गिरती है, पंछी भी उनको गंदा करते हैं। और देवता की एक छोटी सी मूर्ति के लिए मंदिर एक एकड़ में, डेढ़ एकड़ में, दो एकड़ में बनता है। तो हमने इतने गुण धारण किए, कहते हैं ना गुण एव पूज्यन्ते, गुणों की ही पूजा होती है, हम इतने गुणवान बने तो अंतिम जन्म तक भी अनजाने में लोग हमें कितना मान देते हैं, कितनी हमारी इज्जत करते हैं, कीर्तन गाते हैं तो भी सब एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, बहुत सुंदर बाजी गाजी के साथ विधिवत कीर्तन की शुरुआत करते हैं। अगर हम पूज्य देवी देवताओं का कोई त्योहार मनाते हैं तो भी घर के आगे कितना कोई स्वास्तिक बनाना, डेकोरेशन करना, घर में कितने प्रकार के भोग प्रसाद बनाना, व्रत करना, फिर सुचे मुंह से सब पूजा करना, तो कितना त्याग करते हैं यादगार में। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे पूज्य हो, आप सबके दिल पे राज करते हो, आपने आत्माओं की दिल से सेवा की है, इसलिए दो युगों तक आत्माएं भी दिल से आपका आह्वान करती हैं और अंदर ही अंदर आपका नाम लेने से कितने खुश होते हैं, अपने बच्चों के नाम भी आपके नाम पर रखते हैं ताकि बच्चे को पुकारें तो भी किसी देवी देवता की याद आए। दुनिया में एक हुईज हु की बुक निकलती है तो उसमें जो संसार के मुख्य लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका वर्णन होता है। बाबा ने कहा, आपका वर्णन तो शास्त्रों में होता है और शास्त्रों के लोग सिर पे रख के परिक्रमा करते हैं। घर में जिस अलमारी में शास्त्र रखे होते हैं तो बच्चों को खास आदेश होता है कि झूठे हाथ नहीं लगाना, मैले हाथ नहीं लगाना, शास्त्रों को छूना नहीं। तो इतनी पवित्र पुस्तकों में आपका वर्णन है, आपके चरित्र, आपके लीला वर्णित है, तो आप इस भट्टी में बार बार अपने उस पूज्य रूप को इमर्ज करना। मैं कमल वासिनी हूँ, मैं देवी हूँ, वरदानी हूँ, कल्याणी हूँ, सिद्धिदात्री हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, पवित्रता का वरदान देने वाली हूँ, और महसूस करना कि विश्व की जो वंचित आत्माएं हैं वो सामने आ रही हैं, वरदान लेके जा रही हैं, झोली भर के जा रही हैं, तृप्त होके जा रही हैं, क्योंकि अभी हम जो मनसा से वरदान देंगे वो वरदान ही अगले कल्प में उन भक्तों को प्राप्ति की अनुभूति कराएंगे, वर्तमान में भी और अगले कल्प में भी। तो ये हम सबका पूज्य स्वरूप है। और एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे आजकल दुनिया में बहुत हलचल हो रही है, कहीं बाढ़ है, अभी बेमौसम बरसात पड़ी पंजाब में, पंजाब का गुरु बैठा हुआ है, लोगों की 80% फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो व्यापारी का मन भी मायूस होगा, क्योंकि फसल के बिना व्यापारी को भी आमदनी नहीं, किसी को भी आमदनी नहीं, फसल ही सब चीजों का मूल आधार होती है। तो बाबा ने कहा था कि आप पूर्वज बच्चे, पूज्य बच्चे, केवल समाचार पढ़ते हो जानकारी के लिए, समाचार पढ़ते हो या समाचार पढ़ के आपके मन में दया भाव जागृत होता है कि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो दुखी है, अशांत है। तो समाचार केवल नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, उनको सकाश देना है, उनको रहम की और दया की किरणें देनी है। तो हम बच्चे रोज देखते हैं कि दुनिया में विनाश की ज्वाला धीरे धीरे प्रकट होके आगे विकराल रूप को धारण करती जा रही है। ऐसे ऐसे भयंकर कांड होते हैं कि उनको देख करके आम आदमी तो सोचता है कि दुनिया का क्या होगा, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने जानी जाना हार बनाया है। तो हमको अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी है, हमारे सामने वो घटना घट जाए तो हमारा मन चलायमान, डोलायमान या भयभीत ना हो, और हम और आत्माओं को भी भय से मुक्त करें। ये है हमारा पूज्य और पूर्वज रूप। जो खुद ही भयभीत होगा वो औरों को शक्ति कैसे देगा, और फिर बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। हम अपने आप से पूछें कि अचानक हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो क्या हमें वो सहन शक्ति है, क्या हमें वो बीमारी को फेस करने की ताकत है, कहीं बीमारी को देख करके हमें रोना तो नहीं आएगा, हम बाबा को ये तो नहीं कहेंगे बाबा ये क्या हो गया अचानक। भाई जिसके पास शरीर है उसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ब्राह्मण माना एवर रेडी, हर बात के लिए एवर रेडी। वो चुनौती दे कि बीमारी तुमको आना है तो आ जाओ, मैं तुमको फेस करूंगा और तुम्हारे होते हुए भी मैं अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना के रखूंगा, या और भी कोई पेपर आना हो तो बेशक आ जाओ। तो ऐसी हम चुनौती दे सके, भयभीत ना हो, तो वो तैयारी भी कैसी होगी जब हम अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित रहेंगे। क्योंकि हम तो औरों की समस्या का समाधान करने वाले, तो खुद भला समस्या के अधीन कैसे होंगे। तो बार बार उस स्वमान को जागृत करना, और केवल स्मृति नहीं उसकी अनुभूति में टिकना। जैसे एक बार हमने एक छोटी सी बात सुनी थी, जब पंजाब में आतंकवाद था तो जैसे एक व्यक्ति बस में बैठा तो उसको एकदम संकल्प आया, अरे कहीं उग्रवादी आक्रमण तो नहीं कर देंगे। तो बस में बैठे बैठे उसकी हालत बिगड़ गई क्योंकि वो डर गया, अभी आक्रमण हुआ ही नहीं था। दूसरा व्यक्ति था, उसके मन में आया, वो ज्ञान वाला था, उसके मन में आया कि मैं तो श्री कृष्ण के वंश का हूँ, अगर कोई बस में चढ़ेगा भी ना तो मेरे थ्रू उसको श्री कृष्ण की अनुभूति होगी, श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति होगी। तो वो इतना निर्भय होकर के पूरा सफर भी करता है और उसके चेहरे पे एक ग्लो बनी रहती है। मतलब जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो चलते फिरते हम अपने स्वमान में रहे, हम इधर देखेंगे उधर देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे किसी दृश्य को देखेंगे, वो तो हम रोज ही देखते हैं, उनमें कोई नवीनता तो है नहीं, और वैसे हमें नवीनता अच्छी लगती है। तो नवीनता बाहर नहीं होती, नवीनता हमारे भीतर होती है, हमारे विचारों में होती है, हमारे चिंतन में होती है। हम नया नया चिंतन करेंगे तो भीतर का सुख प्रकट होगा, अपने चिंतन का हमें सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से हम नया नया स्वमान लेंगे, सोते जगते खाते पीते, और एक विशेष भोजन पे हमें ध्यान रखना है, भोजन पे बातें नहीं करनी है। कल एक बहन यहाँ मुरली सुना रही थी तो उसने बताया कि दादी चंद्रमणि जब हमारे पास आई तो किसी माता ने कहा कि मेरा योग नहीं लग रहा है, तो दादी ने पहला सवाल यही पूछा कि आप अपने भोजन की चेकिंग करो, मतलब आप भोजन याद में खाती हो, मौन में खाती हो, एकाग्रता से खाती हो, अनासक्त होके खाती हो, क्योंकि उसका योग से गहरा कनेक्शन। तो हम सबको भोजन पे विशेष अटेंशन देना है, जो बाबा ने भोजन खाने की विधि बताई है। नहीं तो बाबा ने कहा था कि माया पास में खड़ी होती है, वो सारा भोजन खा जाती है और मेरे बच्चे कमजोर हो जाते हैं, तो माया बलवान बन जाती है, फिर वो वार करती है। तो योगी का भोजन कैसा होता है, यहाँ बहुत स्वादिष्ट चीजें बनती है मधुबन में, आप सब तो भाई बाबा के लाडले प्रिंस हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं। कभी कभी आप आते हो, कितनी भी बढ़िया खातरी हो, लेकिन आपको भोजन संयम से ही करना है। ऐसा ना हो कि भोजन खाने के बाद आलस आ गया, आप तो क्लास में बैठा नहीं जाता है, थोड़ा बाहर घूम के आए, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि संयम हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है। तो अपने आप का, अपने आप ध्यान रखना है और इस भट्टी को हमें यादगार भट्टी बनाना है। ओम शांति,
ओम शांति। आपका ये भट्टी का जो ग्रुप है उसकी संयोजी का धर्मिष्ठा बहन है, धर्मिष्ठा बहन का भी स्वागत है। आप शांतिवन में समर्पित है, कितने सालों, 16 वर्षों से आप समर्पित है और आप वीडियो एडिटिंग का कार्य संभालते हैं।
शिव की याद रहेगी तब आँखों
शांति। तो हर क्लास के आरंभ में, अंत में, पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट धर्मिष्ठा बहन करेंगे। टीचर्स बहनों को या गाइड भाई बहनों को कोई भी बात पूछनी हो, कहनी हो, तो आप धर्मिष्ठा बहन से बात कर सकते हैं। बाकी को आप सब बाबा के घर के अनुभवी हैं और हमारी टीचर्स बहने, गाइड भाई बहने साथ आए हैं। आपको कुछ भी है अपने गाइड को बताएं और अच्छी तरह से भट्टी को सफल करेंगे। अभी बाबा के घर से आप सबको टोली दी जाएगी। इस तरफ से भाई आएंगे, इस तरफ से बहने आएंगी, भाइयों के बाद फिर बहनें भी इस तरफ से आएंगी। तो बहुत शांति से, धीरज से और अपनी रॉयलिटी से लाइन में आते जाएंगे, टोली लेते जाएंगे। हमारी रुक्मणी बहन जी भी पधारे हैं। आप मुख्यालय की निमित्त संदेशी बहन हैं। जो भी भाई बहने बाबा को भोग लगाते हैं, आप बाबा के पास भोग ले जाते हैं और बाबा का संदेश लेकर आते हैं, तो दिव्य दृष्टि का वरदान बाबा से आपको प्राप्त है। आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरफ से आने वाले भाई बहनों को बहन जी टोली देंगे, उस तरफ से उर्मिला बहन देंगे। तो आप सभी भाई उठेंगे आगे से, लाइन में शांति से आते जाएं। हम नहीं कहेंगे कि हिसार वाले आवे, कि मोरबी वाले आवे, कि हैदराबाद वाले आए। आगे से लाइन उठती जाएं, पहली लाइन उठे, फिर दूसरी लाइन उठे। आप थोड़े से भाई बहने हैं, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। फिर आप भोजन पर जाएंगे, विश्राम करेंगे।
ओम शांति। इस तरफ भाइयों की तरफ से माताएं भी आ सकती हैं, क्योंकि भाइयों की संख्या थोड़ी है, माताओं की संख्या ज्यादा है। और बैठने की व्यवस्था के लिए भी माताएं भी
थोड़ा, टीचर बहने यहाँ आ जाएं, लाइन में आगे करें सबको।
और आगे की सोफे की लाइन भाइयों के लिए छोड़ करके ये तीन रो में माताएं बैठेंगी और इस तरफ भाई बैठेंगे।
बहनें पीछे से जुड़ेगी, भाइयों के बीच में एक भी बहन नहीं आएगी, पीछे
भाइयों के पीछे से माताएं लाइन लगाएंगी।
हाँ, भाइयों के पीछे से बहनें आएंगी। बहनें अभी से क्यों उठ गई? ना बोला ना, शांति से एक एक लाइन उठो। आगे आओ, नजदीक हाथ लंबा करो और टोली लो। नजदीक आओ, बहन जी के नजदीक आके हाथ लंबा करके टोली लो। तीन नंबर गेट से बाहर जाएंगे, बीच से उतरेंगे और पीछे तीन नंबर गेट से जाएंगे। यहाँ बीच में थोड़ा गैप रखे ताकि जाने वाले को भी रास्ता मिले।